रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अली मुसवी, प्रोग्राम खुदा की तरफ लेकर आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आपको आपके इल्म है कि ये एक नया प्रोग्राम है जिसको माह मुबारक रमज़ान में शुरू किया गया, और माह मुबारक रमज़ान की ही मुनासिबत से जो है ये आपकी खिदमत में पेश किया जाता रहेगा जब तक हम परवरदिगार की अजीम मेहमानी में हैं, उसके अजीम दस्तखान के ऊपर हैं, उसकी नेमतों से सरफराज हो रहे हैं। इसके अंदर हमारे तीन मेहमान आने गिरामी जो है वो हिस्सा लेते हैं। दो मेहमान हमारे कौम से होते हैं और एक लंदन से होते हैं। हम तारुफ करा दें आपका, सैयद मौलाना सैयद मोहम्मद रजा जान काजमी साहब हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। मौलाना सैयद आरिफ हुसैन साहब काजमी साहब हमें कौम से ज्वाइन कर रहे हैं। सैयद अली रजा जान काजमी साहब हमें कौम से ज्वाइन, मेहमान आने गिरामी की खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे और उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे।
अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
अलैकुम अस्सलाम
प्रोग्राम
रहमतुल्लाह।
में गुज़श्ता प्रोग्राम से इसको पेवस्ता करेंगे, उसके अंदर हमने बहुत सारे दीनी जो है वो मारिफ हासिल किए। माह मुबारक रमज़ान की ये कैसा दस्तखान है, इसके ऊपर क्या नेमतें हैं, इसके ऊपर क्या लताफतें हैं, ये माह मुबारक हमसे क्या चाहता है, तमाम के ऊपर हमने गुफ्तगू को अपनी गुज़श्ता जो हमारी सिटिंग थी, जो हमारा प्रोग्राम था, उसके अंदर हमने की। हम इसको दूसरे मरहले में जब लेके जा रहे हैं तो इनको अपनी पिछली जो हमारी तमाम जो मामलात हैं उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले हम बढ़ेंगे सैयद मोहम्मद रजा जान काजमी साहब की तरफ कि किबला, प्रोग्राम का नाम ही खुदा की तरफ है, तो इस माह में तो और ज्यादा स्पिरिचुअली इंसान आमादा है खुदा की जानिब, उसके मेजर में जो है वो इबादतें कर रहा है, उसका दिल नरम हुआ हुआ है। खुदा के बढ़ने, खुदा की तरफ बढ़ने के जो फवायद है वो क्या है, वो जरा बयान फरमाइए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह, बड़ा प्यारा सवाल आपने पूछा कि खुदा की तरफ बढ़ने के क्या फायदे हैं। जरा हम इसको पीछे लेकर आ जाए, अपनी लाइफ को देखें, हमारी जो नॉर्मल लाइफ है, अपनी नॉर्मल लाइफ में हम किस चीज की तरफ ज्यादा बढ़ रहे होते हैं। हम खाने पीने के शौक रखने वाले स्टूडेंट्स और खाने पीने के तरफ बढ़ रहे होते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट के मैचेस देखने, वो जनाब क्रिकेट के मैच देखने की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जो इंसान जो जो शौक रखता है वो अपने उस शौक के लिए खर्चा करता है, इन्वेस्ट करता है, घूमने फिरने वाले कभी पेरिस में जा रहे हैं, कभी दुबई में जा रहे हैं, और वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपनी दुनियावी लाइफ में अब हलाल लज्जतें भी हैं, कुछ हराम लज्जतें भी हैं, लेकिन लोग उन लज्जतों की तरफ, मादी लज्जतों की तरफ, जो कि टेम्पररी लज्जतें हैं, जो खत्म हो जाने वाली लज्जतें, वो आदमी जो खाने पीने के चक्कर में रेस्टोरेंटों का चक्कर लगा रहा है, उसका जो मजा है तब तक है जब तक जबान पे खाना है, वो खाना गले से नीचे गया, मजा खत्म हो गया, ठीक है। इसी तरह जो घूमने फिरने वाले गए, एक हफ्ते के लिए कहीं चले गए, वापस आ गए, वो मजा एक हफ्ते का था। ये जो लिमिटेड मजे हैं, ये जो महदूद मजे हैं, चाहे हलाल हो या हराम हो, जो हराम की तरफ जा रहा है वो तो खसरत दुनिया वाला आखिर है, लेकिन जो हलाल मजों के पीछे भी जा रहा है वो थोड़ी देर का मजा है, लिमिटेड मजा है, महदूद मजा है, मगर हम उन मजों के लिए कितनी कोशिशें करते हैं, कितनी मेहनतें करते हैं कि हमें वो मजा मिल जाए, हमें वो इंजॉयमेंट मिल जाए। अच्छा, अब आते हैं अल्लाह की तरफ, हम अल्लाह की तरफ कितना बढ़ते हैं, हमारा हाल इंशाल्लाह आज दुआ इफ्तिताह हम पढ़ेंगे। दुआ इफ्तिताह में इमाम ज़माना अज्जल अल्लाह ताला फरज शरीफ ने हमें ये सिखाया कि लोगों तुम्हारा हाल क्या है, जरा उठो, जरा बेदार हो जाओ। इमाम फरमाते हैं मेरे अल्लाह, हमारा हाल दुनिया वालों का हाल हमें बता रहे, मौला हमें सिखा रहे, दुआ इफ्तिताह जरूर पढ़िए रमजान के महीने में। इमाम क्या सिखा रहे हैं कि हम लोग का हाल क्या हो चुका है, या रब इन्नका तदउनी फवल्ली अंका, मेरे अल्लाह तू मुझे बुला रहा है, तुझसे मुंह फेर रहा हूँ, अल्लाह की तरफ बढ़ना चाहिए। रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्रिकेट मैचेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो सिनेमा जाने वाले सिनेमा फिल्मों की तरफ बढ़ रहे हैं, घूमने फिरने वाले घूमने फिरने की तरफ बढ़ रहे हैं, दुनियावी मादी महदूद लिमिटेड मजे और लज्जतों की तरफ तो बढ़ रहे हैं, मगर अल्लाह की तरफ हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह से भाग रहे हैं, दूर हो रहे हैं। इमाम करे लोगो, अल्लाह तुमसे बात करना चाह रहा है, अल्लाह तुम्हें दावत दे रहा है, अल्लाह तुमसे गुफ्तगू करना चाह रहा है, या रब्बे इन्नका तदउनी फअवल्ली अनक, मुझे बुला रहा है, मैं तुझसे मुंह फेर रहा हूं, वततहब्बब इलैया फअतबग्गद इलैका। ये दुआ इफ्तिताह जरूर पढ़िए खुदा रा, और तर्जुमे के साथ पढ़िए, रमजान में पढ़ने के लिए रेकमेंडेड है कि मेरे अल्लाह तू मुझसे दोस्ती करना चाहता है और मैं तुझसे बहुत दुश्मनी कर रहा हूँ, मैं तुझसे मुंह फेर रहा हूँ। मैं एक मिसाल दूं, दुनियावी मिसाल, आजकल अनफॉर्चुनेटली स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में देखिए, जवान जो है एक नामहरम लड़की को अपना दोस्त बनाने के लिए कितना खर्चा कर लेते हैं, जो कि हराम है। ये गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड किसी शिया सुन्नी किसी आलिम से भी पूछ ले, वो कहेंगे ये हराम है, ये एक किस्म का जिना है। लेकिन वो लड़के नादानी में जाहिरी हराम लज्जत को देखते हुए वो कितना इन्वेस्ट कर लेते हैं एक लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन इमाम करे, ए बंदे खुदा, अल्लाह तुमसे दोस्ती करना चाह रहा है। वततहब्बब इलैया वततवद्दद इलैया, अल्लाह तू मुझसे मोहब्बत करना चाह रहा है, तू मुझसे दोस्ती करना चाह रहा है। ए बंदे आ जा मेरे दोस्त बन जा, ए बंदे आ जा अल्लाह बन जा। अल्लाह का दोस्त बनना कोई आम बात नहीं है, अल्लाह कह रहे आ जा मेरे दोस्त बन जा। लेकिन इमाम कह रहे हमारा क्या हाल है, तबग़ो इलैया फला अक़बलु मिंक, मैं बार बार मुंह फेर रहा हूँ, मैं बार बार उससे दूरी अख्तियार कर रहा हूँ, ये हमारा हाल है। हालांकि हमें अल्लाह की तरफ जाना है। अल्लाह अनफॉर्चुनेटली आप देखिए इसी रमजान को अल्लाह ने किस लिए खल किया, ताकि हम अल्लाह की तरफ आए। मगर अनफॉर्चुनेटली इसी रमजान में हमारा क्या हाल है, हम पेट और शिकम परस्ती की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ने रमजान इसीलिए खल किया ना कि भाई ए बंदो आ जाओ मेरे साथ दोस्ती करो, मेरे साथ गुफ्तगू करो, मेरे साथ बातें करो। लेकिन हमारा क्या हाल है, इसी रमजान को ही देख ले, एक मिसाल दूं, जो हम हर इंसान जो रोजा रख रहा है डेली, जो बेचारा अफ्तारी के लिए इंतजाम करता है, वो सब इससे दरकार है कि भाई अफ्तारी से 3-4 घंटे पहले से तैयारी कि आज क्या खाया जाए। अल्लाह ने रमजान ये तो नहीं बनाया कि भाई सोचते रहो आज क्या खाएं कल क्या खाएं, बल्कि जब अफ्तारी कर रहे होते हैं उसमें ये होती है कि भाई आज तो बिरयानी खा ली, लेकिन आज समोसे नहीं थे, कल समोसे और पकौड़े दोनों बनाना। ये हमारा छोड़ते हुए जा रहे हैं, मगर अल्लाह ने रमजान इसलिए नहीं बनाया। अल्लाह ने रमजान बनाया, ए मेरे बंदे आ जा मुझसे दोस्ती कर, आ जा मेरे दोस्त। सवाल पूछते हो खुद से भी नाजरीन से भी कि भाई हम लोग खाने पीने के मामले में तो ऐसा कहते हैं ना कि आज समोसे नहीं थे कल बेगम जरूर समोसे बनाना, क्या हम नमाज रोजे के मुतालिक भी ऐसे सोचते हैं? नमाज मगरब व इशा पढ़ते हुए कहें आज हमने नमाज मगरब व इशा तो पढ़ ली, लेकिन कल से इंशाल्लाह मगरब व इशा के मुस्तहबात पे भी अमल करेंगे। हमें हमने ये कभी कहा कि भाई आज हमने या अली या अजीम की दुआ पढ़ ली, कल से इंशाल्लाह अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल कुबूर सुरूर वाली दुआ भी पढ़ेंगे। भाई क्या नमाज के मुताल्लिक, इबादात के मुताल्लिक हम ऐसे कहते हैं कि आज हमने 2 रकत नमाज तहज्जुद पढ़ी, कल इंशाल्लाह 4 रकत करेंगे, परसों इंशाल्लाह 6 रकत पढ़ेंगे, आज हमने 2 जुज पढ़ लिए तो कल 4 जुज पढ़ेंगे। 2 जुज तो बहुत बड़ी बात है, 1 जुज भी मुश्किल से लोग पढ़ते हैं। लोगों से जब कहा जाए कि भाई आप कुरान क्यों नहीं पढ़ रहे, महीना कुरान का है, कहते हैं टाइम नहीं मिलता। अफसोस की बात है, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, ड्रामे देखने का, रमजान के सारे ड्रामे देखने हैं, रमजान के सारे शोज देखने हैं, ड्रामे देखने का टाइम है, फुटबॉल मैचेस देखने का टाइम है, शोज देखने का टाइम है, मगर कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। अफसोस की
टाइम
बात
नहीं है,
टाइम
अल्लाह
हमारी नजर में अहमियत नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारे लिए एक नॉर्मल सी बात है कुरान पढ़ना। हालांकि सुनिए, रिवायात में मिलता है सिर्फ रमजान नहीं, थ्रू आउट द ईयर पूरा साल अगर एक इंसान दिन में कम से कम 10 आयतें पढ़ ले, कम से कम 10 आयतें तो आसान है,
10 आयतें
तो रिवायत बता
बहुत आसान।
लम युक्त मिनल गाफिलीन, अगर कोई दिन में सिर्फ 10 आयतें पढ़ ले वो गाफिल फिर उसे नहीं कहा जाएगा कि भाई कम से कम इसने दिन में पढ़ी अल्लाह से गुफ्तगू। फिर रिवायत कंटिन्यू होती है कि अगर कोई 50 आयतें पढ़े दिन में कुतिब मिन ज़ाकिरीन, अल्लाह लिख देगा ये बड़ा ज़ाकिर है, ये तो मेरा ज़ाकिर है, ये मेरा जिक्र कर रहा है, इतना मुफ्त में सवाब मिल रहा है। अब खुदा की तरफ जाने का क्या सवाब है, क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, मैं खुलासा करूं क्योंकि गुफ्तगू आगे भी होनी है, दूसरे बुजुर्ग उलमा मौजूद हैं, मैं सिर्फ इशारा करूं एक कि खुदा की तरफ जाने का हमारा हमें क्या फायदा मिलेगा। हमारा हाल तो आप सुन चुके हैं कि खाने की तरफ समोसे पकौड़ों की तरफ हमारा रुझान है, लेकिन अल्लाह की तरफ जाने का क्या फायदा, सिर्फ एक जुमला में आपको हदिया करूं। अल्लाह कहता है हदीस कुदसी है, तो अल्लामा मजलिसी ने बिहार अनवार में भी लिखा है, वसाइल शिया में भी हदीस मौजूद है, बहुत बड़ी अजीम हदीस है, इसीलिए मैंने रेफरेंस दिए कि कल कोई एतराज न करे। हदीस में मौला कहते हैं, अल्लाह कहता है अब्दी अतअनी हत्ता अजअलुका मिस्ली, अल्लाह की तरफ जाने का फायदा, अल्लाह कह रहे ए मेरे बंदे मेरी तरफ आ जा, ए मेरे बंदे मेरी बात सुन ले, ए मेरे बंदे मेरी बात कर ले, ताकि मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूं। अजीब जुमला है और अजीब, क्या मतलब, यानी जब हम अल्लाह की इताअत करेंगे तो हम मुस्तजाबु दावा बनेंगे, तो जो दुआ करेंगे यहाँ जैसे अल्लाह कुन कहता है फयकून हो जाता है, यहाँ हम दुआ करेंगे अल्लाह फौरन हमारी दुआ कबूल कर लेगा,
कबूल करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह,
इंशाल्लाह उम्मीद
सुभान
है
अल्लाह।
कि ये रमजान का महीना ट्रेनिंग का महीना है, हम इसमें ट्रेन हो जाएं और खुद को इंशाल्लाह उस लेवल तक पहुंचा दें जो कि इताअत खुदा की लेवल है, कि हम हमेशा पूरी
सुभान अल्लाह,
जिंदगी इताअत खुदा में गुजार दें, इसमें हमारा ही अपना फायदा
इताअत
है।
खुदा गुजारे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मोहम्मद रजा जान काजमी साहब आपने पेश किया कि परवरदिगार की तरफ जाने में, उसके महजर में जाने में क्या क्या फायदे हैं। यकीनन उस वो बुजुर्ग है, उसका दस्तखान भी बुजुर्ग है, उसकी नेमतें भी बुजुर्ग है। आगे बढ़ेंगे, मौलाना सैयद आरिफ हुसैन काजमी साहब कुम से हमारे साथ हैं। क़िबला ईमान की काफी कई अकसाम है, मगर जब बात होती है तो ईमान कामिल अगर किसी को चाहिए है कि वो ईमान किस उसका ईमान किस तरह से कामिल हो जाए तो वो किस तरह से होगा, वो किस तरह से हासिल होगा, ये जज्बा कैसे मिलेगा इंसान को, इस पर रोशनी डालें क़िबला।
जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
सलाम
मैं अपनी
रहमतुल्लाह।
गुफ्तगू को मौलाना की गुफ्तगू से रिलेट करूं। देखिए, हम बहुत मर्तबा लोगों को कहते हैं कि नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, इबादत करें, अब्द कामिल बने, इंसान कामिल बने, लेकिन जब तक वो बंदा उसकी कीमत और अर्जिश को नहीं जानेगा तब तक वो उसके पीछे नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पे लोग पकौड़ों के पीछे जा रहे हैं, खाने के पीछे जा रहे हैं, वो उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं तभी उसके पीछे जा रहे हैं ना। उसने पकौड़े का जायका चखा और खाने का जायका चखा तभी उसके पीछे जा रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। या आज की दुनिया पैसे के पीछे जा रही है, शोहरत के पीछे जा रही है, इससे मौलवी भी मुस्तस्ना नहीं है, हर आदमी उसके पीछे है क्योंकि वो उसके रिजल्ट को दुनिया में देख रहा है, उसको कुछ ना कुछ मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक पे आपको व्यूअरशिप मिल रही है या आपको यूट्यूब पे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, तो जिस चीज़ को इंसान महसूस करता है उस चीज़ के इंसान पीछे जाता है। तो जब तक हम किसी चीज की अहमियत को बता नहीं देते तब तक कोई उसको फॉलो करने की सलाहियत नहीं रखता। मिसाल के तौर पे अंग्रेज पहले अफ्रीका जाते थे और अफ्रीकन्स के पास आईना था, अपना उनके पास सोना होता था, तो अंग्रेज उसको आईना दिखा के उससे सोना लेते थे क्योंकि उनको सोने की कीमत का पता नहीं था, तो वो आईना देते थे और सोना लेते थे। तो शैतान भी यही करता है, वो हमारे कीमती ईमान को हमसे ले लेता है और उसके बदले में बिल्कुल ना चीजें हमें दे देता है। मैं कुरान की तरफ इशारा करूं, कुरान का वो सूरा जो दिन में 10 मरतबा हर मुसलमान पर पढ़ना वाजिब है, जिसे सूरह हम कहा जाता है, यानी शायद कायनात का कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिसको सूरह हम पढ़ना वाजिब हो। वहां पर खुदा कहता है मालिक यौमुद्दीन, मैं यौमुद्दीन का मालिक हूँ। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि खुदा दुनिया का मालिक नहीं है, तो उसने सिर्फ ये कहा कि मैं यौमुद्दीन यानी कयामत का मालिक हूँ, और ऐसा क्यों कहा? तो उलमा फरमाते हैं क्यों परवरदिगार आलम ने ऐसा कहा, क्योंकि कयामत एक वाहिद मकाम है जहां पर कंप्लीट इंसान खुदा को महसूस करेगा, उसके मालिक होने को महसूस करेगा, लेकिन इस दुनिया में हम अल्लाह की मालिकियत को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर पैसा है, यहाँ पर दौलत है, यहाँ पर माल है, यहाँ पर शोहरत है, यहाँ पर कुदरत है, यहाँ पर ताकत है, तो कभी कभी हमें ये लगता है कि मैं मालिक, ये गाड़ी मेरी है तो मैं मालिक हूँ, बच्चे मेरे हैं मैं मालिक हूँ, ये घर मेरा है मैं मालिक हूँ, मैं खुद को मालिक समझता हूँ, लेकिन खुदा ने कहा अल्लाह यौमुद्दीन का मालिक है। यानी ऐसा दिन आएगा लोग जहाँ पर औलाद तुम्हारे काम नहीं आएगी, जहाँ पर अंसाब तुम्हारे काम नहीं आएंगे, रिश्तेदार अरहाम तुम्हारे काम नहीं आएंगे, जहाँ पर माल तुम्हारे काम नहीं आएगा, जहाँ पर दौलत तुम्हारे काम नहीं, जहाँ पर बिल्कुल इंसान बेबस हो जाएगा। यहाँ तक परवरदिगार आलम ने कहा कि कयामत के दिन ये जबान जो तुम्हारे पास है, ये जबान भी तुम्हारे काम नहीं आएगी, क्योंकि इस जबान से दुनिया में तो लोगों की चापलूसी करता है, कोई फायदा ले सकता है, लेकिन कयामत के दिन ये चापलूसी यानी ये जबान भी तुम्हारे काम नहीं आएगी।
नहीं
तो एक
आएगी,
तो इस चीज की बहुत समझना जरूरी है कि ये जो इबादात है इसकी अहमियत क्या है। जब तक हम अहमियत को नहीं समझ लेते तो तब तक हम उसके पीछे नहीं जाते। इसकी अहमियत को समझने के लिए हमें इस्लाम से ईमान की तरफ आना होगा, कि कुरान की आयत है कि कह दो इन अराब को कि ये इस्लाम लेकर आए हैं लेकिन ईमान लेकर नहीं आए। हमने अपनी पिछली नशस्त में इशारा किया था कि ईमान जब तक जड़े न पकड़ दे, एक मरतबा ईमान जाहिरी ईमान है, इंशाल्लाह आपके अगले सवाल में मैं इसको लेकर जाऊंगा, गुफ्तगू तूलानी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर छठ ईमान की एक रिवायत अर्ज कर दूं। अभी बहुत सारे इश्यूज पाकिस्तान में और मुख्तलिफ जगहों पे चल रहे हैं कि हम हमारी आदत हो गई है कि हम एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं। मिसाल के तौर पर एक नजरियाती आदमी है तो वो जो नजरियाती नहीं है वो उसको कहता है इसका ईमान कामिल नहीं है, या एक बंदा नमाज अदा करने वाला है, रोजा रखने वाला है और उसकी आदत बन गई जो बेरोजेदार है, जो रोजा नहीं रख रहा, नमाज नहीं पढ़ रहा, हज पे नहीं जा रहा, हम उसको कहते हैं कि ये तो ईमान से गया गुजरा है, लियाज़ बिल्लाह ये कहना चाहते हैं ये। اسی طرح ایک شخص میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی
صادق
خدمت میں
اللهم
آتا
صل على محمد
اور
صل على
اب
محمد
مولا لوگوں کے ایمان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگوں کا ایمان تو گیا گزرا ہے، گویا کہنا چاہتا تھا وہ سارے بے ایمان ہیں اور سارے جہنم میں چلے جائیں گے، جس طرح ہمیں عادت ہو گئی ہے لوگوں کو سرٹیفکیٹ دینے کی، یا جنت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں یا جہنم کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، تو چھٹے امام
بالکل سر
فرماتے ہیں ہرگز کسی کو ایسا مت کہا کرو کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، مولا وہ کیسے؟ امام فرماتے ہیں تم جس شخص کو جج کر رہے ہو اپنے ایمان کو دیکھ کر جج کرو، مثلا اگر تم نماز پڑھتے ہو، تم روزہ رکھتے ہو، تم حج پہ جاتے ہو اور خمس دیتے ہو اور کوئی شیعہ خدا نہ خاصہ خمس نہیں دیتا یا حج پہ نہیں جا رہا یا نماز نہیں پڑھ رہا، لہٰذا تم اپنے ایمان کو جج کر رہے ہو اور اسے کہہ رہے ہو کہ یہ بے ایمان۔ حالانکہ امام یہاں پر اشارہ فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں ایمان کی مثال ہے سیڑھی کی طرح، جسے ہم کہہ
اللہ
سکتے
اکبر
ہیں
سبحان
اسٹیپ
اللہ
بائی اسٹیپ، ہو
سٹیپ
سکتا
بائی
ہے کہ
سٹیپ
وہ ایمان کے پہلے درجے پر ہو، تم ایمان کے پانچویں درجے پر ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ بے ایمان ہے، حالانکہ وہ بھی مومن ہے لیکن ایمان کے پہلے درجے پر۔ اور امام فرماتے اگر اس طرح ایمان کو تولنا ہے تو اگر ہم اپنے ایمان کو دیکھیں تو تم تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں، تو ہم اگر اپنے ایمان کو دیکھ کر، یہ ایسا ہے کہ ایک پروفیسر جج کرے ایک بیچلر کے اسٹوڈنٹ کو اور ایک بیچلر پڑھنے والا جج کرے ساتویں کلاس کے اسٹوڈنٹ کو، تو یقیناً اس کا علم آپ کے مقابلے میں کم ہے۔ امام فرماتے اگر کسی
بالکل
کی برائی کو دیکھتے ہو، اگر کسی کے اندر عیب کو دیکھتے ہو تو تمہارے اوپر ہے کہ تم امر بالمعروف کرو، نہ کہ اسے یہ کہو
سبحان
کہ یہ
اللہ
جہنمی
سبحان
ہے
اللہ
یا بالکل ایمان ہے،
واہ
اس کو سمجھا سکتے ہو، اس کو ایمان کی طرف لا سکتے ہو۔ اور امام یہاں پر ایک تشبیہ دیتے ہیں، امام فرماتے ہیں کبھی کبھی ایمان اس بلندی کو چھونے لگتا ہے کہ انسان کے اگر بدن کو قطع قطع کیا جائے، اگر انسان کے بدن کو، یہ مثال امام فرماتے ہیں، اگر امام انسان کے بدن کو کلاڑی کے ساتھ یا قینچی کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے بھی کیا جائے تو پھر بھی وہ انسان اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتا، پھر بھی اس
نہیں
کے ایمان
ہٹتا
میں
سبحان
کوئی
اللہ
فرق
نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی احسن انداز سے جو ہے وہ سید عارف حسین شاہ قاضوی صاحب کامل ایمان کے اوپر جو ہے وہ معروضات عرض فرما رہے تھے۔ ناظرین مزید آگے بڑھیں گے اور مولانا سید علی رضا قاضوی صاحب جو کہ ہمیں قوم سے جوائن کیے ہوئے ہیں، قبلہ ماہ مبارک رمضان، ماہ توبہ ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کے بغیر جو ہے وہ توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، شفاعت ایک لازمی جز ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اہل بیت علیہ السلام سے عداوت ہے، وہ فوراً قرآن کا سہارا لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی انٹرپریشن جو ہے وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ استدلال جو ہے وہ قرآنی پیش کیا جائے، مگر اہل بیت علیہ السلام کی جو ٹیچنگ ہے جو انہوں نے فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ تو اس حوالے سے ہم کس طرح سے جو منکرین شفاعت اہل بیت علیہ السلام ہیں ان کو کس طرح سے کنوینس کر سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مصوی صاحب، دیکھیے جہاں تک جو سوال آپ نے پوچھا جو شفاعت کے متعلق ہے، دیکھیے قرآن کو کبھی بھی آپ ایک آیت کو لے کر کوئی فیصلہ قرآن کے متعلق نہیں کر سکتے، نہیں حدیث کے متعلق ایک حدیث اٹھا کر آپ فتویٰ نہیں دے سکتے، آپ کو اس ٹاپک سے تمام ریلیٹڈ تمام حدیثوں کو پڑھنا ہوگا، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تمام آیتوں کو پڑھنا ہوگا۔ جہاں تک شفاعت کا تعلق ہے، جب ہم قرآن اٹھاتے ہیں جیسے قرآن میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ راہ خدا میں انفاق کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، اب یہی آیت اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم کریم میں خدا کہہ رہا ہے کہ شفاعت تو ہوئے گی نہیں قیامت میں، یا سورہ مدثر میں ارشاد ہوا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں خداوند متعال نے ارشاد ہوا ایسے لوگ ہیں جن کی شفاعت کرنے والی شرنے شفاعت کرنے والے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اب دیکھیے دونوں آیتیں یہ بتلا رہی کہ قیامت کے دن نہ کوئی شفاعت ہوئے گی نہ کوئی شفاعت کا فائدہ ہوگا، مگر اس کے مد مقابل اگر ہم آئیں تو جیسے آیت الکرسی جو صبح شام ہم پڑھتے ہیں اس میں آپ سب پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو خدا کی اجازت سے شفاعت کرے، تو اب یہ خود آیت بتا رہی ہے کہ شفاعت ممکن ہے مگر اللہ کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں۔ یا ایک دوسری آیت آگے بڑھوں، آپ کو میں ریفرنس کے طور پہ چند آیتیں گنواؤں پھر بعد میں اس کا نتیجہ بھی بتلا دیتا ہوں، کہ سورہ سبا میں آیت نمبر 34 ورس نمبر 23 میں ارشاد ہوا وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، خدا کی بارگاہ میں شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ جنہیں خداوند متعال خود ہی اجازت دے دے، اور آگے بڑھیں. سورہ یونس میں ارشاد ہوا سورہ نمبر 10 آیت نمبر 3, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه. بے شک تمہارا پروردگار خداوند متعال ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور عرش پر اپنا اقتدار جمایا, اور تمام امور کی تدبیر کرنے والا وہی ہے, اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا شفاعت نہیں کر سکتا. اب دیکھیے, تین آیتیں آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی, ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے بتایا. اب یہ تینوں آیتیں کیا بتلا رہی ہیں کہ شفاعت اگر ہوگی تو خداوند متعال ہی کے اجازت سے ہوگی. ایک اور ایک آیت بھی آپ نے پڑھ لوں, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 28, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون, کہ خداوند متعال جانتا ہے کیا تمہارے سامنے ہیں اور کیا تمہارے پیچھے ہے, اور شفاعت کرنے والے انہی کی شفاعت کریں گے جن کے بارے میں خدا اجازت دے گا. اب یہ تمام آیتیں یہ بتلا رہی ہیں کہ شفاعت ہوگی, مگر شفاعت خداوند متعال کی اجازت سے ہوگی. اب جو پہلی دو آیتیں جن کا میں نے خالی ترجمہ پڑھا, وہ آیتیں یہ بتلا رہی تھیں شفاعت بالکل نہیں ہوگی, شفاعت قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گی. وہ آیتیں کہہ رہی ہیں کہ شفاعت نہیں ہوگی, یہ آیتیں کہہ رہی ہیں کہ شفاعت ہوگی, اللہ کی اجازت سے ہوگی. اب سمجھنا یہ, کیا خداوند متعال کی کتاب میں تضاد آ سکتا ہے؟ کیا کوئی کانٹرڈکشن چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی مسلمان یہ نہیں مانتا کہ خدا کی کتاب میں بالکل تضاد نہیں ہو سکتا. اگر تضاد نہیں ہو سکتا تو یہ دونوں آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ پہلا گروپ جو آیتوں کا تھا جن میں خداوند متعال کا کوئی شفاعت نہیں ہوگی, وہ کافروں اور مشرکوں کے بارے میں تھا کہ مشرکوں کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی, کافروں کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی, یا جنہوں نے اپنے بتوں کی شفاعت لے کر آئے ان کی شفاعت نہیں ہوگی. مگر دوسرا گروپ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ وہ شفاعت جنہیں خداوند متعال اجازت دے دے ان کی بے شک شفاعت ہوگی. اسی لیے وہ واقعہ ہے جو سید علی قاضی سے کسی نے کہا کہ قبلہ صاحب, ایک بزرگ عارف باللہ گزرے ہیں جو خود آیت اللہ محمد تقی بہجت کے استاد بھی تھے اور پہنچی ہوئی شخصیت تھے. کچھ وہ ساتھی سو کہتے ہیں کہ صدر اسلام سے لے کر انبیاء اور اولیاء کے بعد, اماموں کے بعد اور اماموں کے خاص فرزندان کے بعد اور خاص صحابیوں کے بعد اگر کہہ دیں تو کوئی شخصیت اتنی جامع اور اتنی عظیم نہیں گزری عرفان میں جتنے عظیم سید علی قاضی گزرے ہیں, یعنی صدر اسلام سے لے کر ہمارے زمانے تک, یعنی یہ وہ عالم دین سے. تو سید علی قاضی سے کسی نے کہا کہ قبلہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں موت سے بہت ڈرتا ہوں, اور انہوں نے حقیقت میں حدیث ہی کا ترجمہ کیا ہے اصل میں, تو موت سے میں بہت ڈرتا ہوں, میں کیا کروں, اور ایک دن موت آ جائے گی اور میں قبر میں دفن ہو جاؤں گا, مٹی کے منوں کے نیچے چلا جاؤں گا, تو اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو سید علی قاضی نے کہا تم روزانہ زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پوچھنے والے نے کہا قبلہ زیارت عاشورہ میں تو موت کا کوئی ذکر نہیں, زیارت عاشورہ میں تو قبر کے ڈر اور خوف کا تو کوئی ذکر نہیں. تو سید علی قاضی نے پوچھا کہ تم جب سجدے میں سر رکھتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ کہا میں آخر میں جب سجدے میں سر رکھتا ہوں پڑھتا ہوں اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم الحمد للہ علی عظیم رضیتی. کہا اگلا جملہ کیا پڑھتے ہو؟ کہا اگلا جملہ یہی پڑھتا ہوں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. اے خدایا مجھے شفاعت حسین عطا فرما, کون سے دن؟ جس دن میں وارد, یعنی جس دن میں داخل ہو رہا ہوں گا, جس دن میں انٹر ہو رہا ہوں گا. کیا جانتے ہو وہ انٹر ہونے کا دن کون سا ہے؟ وہ وہی دن ہے جب تم اپنی قبر میں اندر داخل ہو رہے ہو گے, اور اسی دن کی طرف اشارہ ہے کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. اے خدایا مجھے شفاعت حسین عطا فرما اس دن جب میں قبر میں اندر داخل ہو رہا ہوں گا. تو مقصد یہ کہ ان دونوں آیتوں کو اگر ہم دیکھیں کہ دو گروپس آف آیتیں آ جا رہی ہیں, وہ گروپ آف آیت جو شفاعت کو بالکل ریجیکٹ ہو رہی ہیں, اس آیتوں کو اگر کوئی دیکھے گا سمجھے گا شفاعت ریجیکٹڈ ہے, بلکہ اگر دوسرے گروپ کو دیکھے گا کہے گا شفاعت قابل قبول ہیں. تو ان دونوں کو عقلمند وہ ان دونوں کو ملائے اور ہم کسی آیت کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. اور وہ آیتیں جو ہیں کفار اور مشرکین کے بارے میں اور بتوں کے بارے میں ہیں, اور یہ آیتیں ان ہستیوں کے بارے میں ہیں جن کو خداوند متعال نے شفاعت حقیقت اجازت دی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت ہی عمدہ جو ہے وہ آپ نے توجیہ بیان فرمائی کی شفاعت کے بارے میں. جو منافقین, جو مریض دل والے جن کے دلوں کے اندر مرض ہے, وہ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خود بھی گمراہی میں ہوتے ہیں اور دوسروں को भी फरेब देने की कोशिश करते हैं, हालांकि खुद फरेब खुर्दा होते हैं। मजीद आगे बढ़ेंगे और ईमान के ऊपर बात करेंगे। अभी हमने ईमान की बहस छेड़ी थी मौलाना सैयद आरिफ हुसैन शाह काजमी साहब से। क़िबला, ईमान में, ईमान कामिल पे ऊपर तो आपने गुफ्तगू फरमाई, ईमान में साबित कदम किस तरह रहा जाए, इस पर भी जरा रोशनी डालिए।
जी, ईमान एक बहुत समझे एक उम्दा और लंबा टॉपिक है। तो इसमें सुबात कदम मैं रिलेटेड करूँ अपनी गुफ्तगु को पहले गुफ्तगु से कि मासूम फरमाते हैं ईमान कभी उस नहज तक पहुंच जाता है कि इंसान के बदन को अगर टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए तो इंसान अपने ईमान से पीछे नहीं हटता। ये सुबात कदम की निशानी है जिसकी तरफ मासूम इशारा कर रहे हैं। शबे जरबत मौला अली अलैहि सलातो सलाम है, मौला को जरबत लगी 20 का दिन था, 21 के दिन मौला इस कायनात से रुखसत हुए। तो फरमाते 20 का दिन था, मौला अली बिस्तर पर थे और जहर इतना गहरा था कि मौला के पूरे बदन मसमूम हो चुका था। तो इमाम ने फरमाया, हसन मेरे लाल, दरवाजा घर का खोल दो, जितने भी चाहने वाले मिलना चाहते हैं उनको आने दो, क्योंकि मैं बस अब एक दिन का मेहमान हूँ जिसे ज्यारत करनी है, वलीद ने भी तालिब की ज्यारत कर ले। तो साहब जोक दर जोक आए और मौला की उस हालत को देख कर जारो खता रो भी रहे थे। तो हुजरों में भी असहाब बैठे थे और तमाम पर असहाब इमाम के गिर्द थे। अचानक एक हुजरे से किसी ने मौला की मदह सुराई करना शुरू कर दी और मौला के कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए। तो इमाम के कानों तक जैसे आवाज पहुंची, मौला ने अपनी आंखों को खोला, कहा हसन ये कौन है जो मेरे कसीदे पढ़ रहा है? तो मौला हसन ने फरमाया कि बाबा ये हुजरे अपने हृदय ही है जो आपके कसीदे पढ़ रहे हैं। तो इमाम ने इंतजार किया कि उसका कसीदा खत्म हो जाए, मदह सुराई खत्म हो जाए। उस वक्त जब खत्म हुई तो इमाम ने फरमाया हुजर को मेरे करीब बोला। हुजर ने उदय मौला अली के करीब आए तो इमाम ने फरमाया हुजर ये बता, आज जो तू अली के लिए महसूस कर रहा है, जो फजीलत अली की बयान कर रहा है, हुजर ये बता कल अगर कोई तुझे कहे कि अली के साथ बरात का एहसास करो, इजहार बरात करो, अली इब्न अबी तालिब को बुरा भला कहो, हुजर उस दिन क्या महसूस करोगे, उस दिन क्या करोगे? देखिए ऐज़ान मोहतरम, घरों में बैठकर मौला की फजीलत पढ़ना, स्टूडियो में बैठकर मौला के फजाइल पढ़ना, पेट भरा हुआ हो और बदन पे कोई जख्म ना हो, उस वक्त मौला की फजीलत पढ़ना बड़ा आसान है। लेकिन जब इंसान के ऊपर मशक्कत का वक्त आ जाए, मुसीबतें और बलाएं आ जाए, उस वक्त साबित कदम रहना, ये वो निशानी है सुबात कदम की। तो उस वक्त जनाब हुजर एक जुमला फरमाते हैं, बहुत प्यारा जुमला फरमाते हैं, वल्लाह अली इब्न अबी तालिब, ऐ अमीर المؤمنین, ऐ इमाम المتقین, मुझे कसम है, वल्लाह लो कुतअत बिस्सैफ इरबन इरबा, मुझे खुदा की कसम है अगर तलवार के साथ टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। ये वो मिसदाक है जो छठे इमाम ने फरमाई और ये मिसदाक किसके वजूद में उतर रहा है? जनाब हुजर ने उदय के वजूद में, साथ मुझे टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए तो मौला मैं फिर भी कभी भी आपकी विलायत से, आपकी मोहब्बत से और ईमान से दस्तबरदार नहीं हूंगा। उस वक्त इमाम ने फरमाया वफ़िक़तुल खैर या हुजर, वाकई तू सच कह रहा है। आज अगर हम में से कोई गुनहगार इमाम जमाना को ये कहे कि मौला अगर मेरे वजूद के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं लेकिन मैं फिर भी आपकी विलायत से पीछे नहीं हटूंगा, शायद मौला कहें कि तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन ये मकाम हुजर था कि इमाम ने हुजर को कहा, हुजर वाकई तुम सच बयान कर रहे हो। और तारीख बयान करती है जब कूफे से लेकर शाम के दरवाजे तक की रिवायत में मिलता है कि गुल जामे हुजर के बदन में बांधा गया था, यानी हाथों और पांवों में जंजीरें बांधी गई थी और दरवाजे शाम पे हुजर के उदय को रोका गया और उस वक्त कहा गया कि अली को बुरा भला कहो, सब पे अली करो, वरना ये तलवार है, ये कब्र है, हुजर इसी वक्त में काट दिया जाएगा। लेकिन जो जुमला हुजर ने मौला अली से कहा था उस जुमले पे साबित कदम गर्दन को काटा गया। उस वक्त हुजर ने फरमाया अगर मुझे मार भी दो और मारने के बाद मुझे आग में फेंक भी दो और फेंकने के बाद मेरे जनाजे को जला भी दो, मैं फिर भी मोहब्बत और विलायत अली में भी तालिब से पीछे नहीं हटूंगा। अगर वक्त आए तो मैं आगे थोड़ा इस बयान
थोड़ा सा बस, चूंकि आपकी तरफ नमाज का वक्त हुआ चाहता है तो थोड़ा सा हम अली रजा साहब से भी गुफ्तगू करेंगे, एक दो मिनट आप गुफ्तगू फरमा सकते हैं।
चलिए चलिए चलिए, मैं कुरान से एक छोटी सी इशारा करना चाहता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि इंसान का ईमान एक शख्सियत जनाब हुजर की मिलती है, मुख्तसर बयान करूंगा, लेकिन क्या होता है कि इंसान का ईमान इतना जल्दी खत्म हो जाता है? तो कुरान में आपको एक वाकया मिलता है, ये कुरान का वाकया अगर हर इंसान पढ़े, क्योंकि कुरान एक ऐसी किताब है कि जिस किताब को पढ़ने से ही इंसान के वजूद में नूरानियत उठती है, और ये महीना है भी कुरान का महीना। इसमें कुरान की आयत है कि एक बहुत बड़ा आबिद था, वो आबिद मुस्तजाब दावा था, जब दुआ करता था तो इसकी दुआ कबूल हो जाती थी। लेकिन इसकी कौम ने इसको कहा कि हजरत यूशा नू अल्लाह के नबी के वसी थे, जब ये आने वाले थे तो इस आबिद को कहा गया कि इस अल्लाह के नबी के लिए बददुआ करो। तो इसने पहले इसका वजूद को लरज गया, जिस तरह इमाम हुसैन के लिए कुछ लोगों को कहा गया था कि आप फतवा लिखे, लेकिन इसका वजूद लरज गया। अब सवाल यह है कि इसको बहुत बड़ी ऑफर दी गई थी कि इसको अपने ईमान को जाया कर देनी, बहुत कम ऑफर, कम पैसों के एवज में इसकी बीवी ने इसको मजबूर किया और इसने बददुआ दी। वो जबान जो मुस्तजाब दावा जबान थी, वो जबान जब दुआ करती थी उसकी दुआ कबूल हो जाती थी, लेकिन इसने चंद पैसों के एवज जब बददुआ की तो कुरान में परवरदिगार आलम इस जबान की मिसाल को किस तरह मिसाल देता है, यानी वो जबान जो इतनी अजीम जबान थी जो दुआ करे उसकी दुआ कबूल हो जाए,
सुभान
परवरदिगार आलम
सुभान अल्लाह
की। अब इस जबान को खुदा कहते ये जबान कुत्ते की जबान की तरह, लेकिन सवाल यह है
अल्लाह
इतना बड़ा
अल्लाह
आबिद मुस्तजाब दावा था, उसकी दुआएं कबूल होती थी, ऐसा क्या हुआ? इसके वजूद में ऐसी कौन सी कमी थी कि इसके ईमान को शैतान ने चोरी कर लिया? वो अभी आयत में आपको पता चल आवाज आते वतलु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फनसलख मिनहा फतबअहु शैतान, के शैतान ने फनसलख, अरबी में कसाब को सलाह कहते हैं, सलाह का काम क्या होता है, वो बकरे की खाल को उतार देता है, का शैतान ने इसकी खाल को उतार दिया। फिर हम आते हैं कि कुरान की आवाज आती है कि ईमान को दिलों की जड़ों तक होना चाहिए, ईमान खाल वाला ईमान नहीं होना चाहिए, जाहिरी ईमान नहीं होना
उतर
चाहिए
जाए।
कि सिर्फ मस्जिदों
वाह
में
वाह वाह
आए, सिर्फ हमारी दुआओं पे कोई ईमान नजर आए, जब तक ईमान कल्ब में उतर नहीं जाता। और शैतान यही करता है, जिस तरह आप अखरोट की खाल को तोड़ते हैं अंदर से उसका दाना निकालते हैं, बादाम को निकालने के लिए उसकी खाल को तोड़ा जाता है, तो शैतान भी ये देखता है कि इसके दिल में किसकी मोहब्बत है। जब वो देख लेता है इसके दिल में माल की मोहब्बत है, दुनिया की मोहब्बत है, तो बड़ी आसानी से हमारी जाहिरी ईमान की खाल को उतार देता है और शैतान हमारे ऊपर
सुभान अल्लाह
काबिज
सुभान
हो
अल्लाह
जाता है। तो इंसान अपने कल भी ईमान को मजबूत करे, जब कल भी ईमान मजबूत हो जाएगा तो हमारी बुनियादें, हमारी जड़ें मजबूत होंगी और शैतान फिर हमें धोखा भी नहीं दे सकेगा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने बहुत ही एहसन अंदाज से इसको पेश किया और जिक्र किया जनाब हुजूर इब्ने अदी का, और हमारे तमाम नाजरीन की ही आंखें भर आई होंगी इस जिक्र पर कि उनका इश्क अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ यकीनन किस कदर शदीद था कि आज 1400 साल के बाद भी दुश्मन ने जनाब हुजूर इब्ने अदी को बख्शा नहीं, उस वक्त कत्ल किया था, अब उनके मजार को मुनहदिम किया। और हम आगे बढ़ेंगे मौलाना सैयद अली रजा जान काजमी साहब की तरफ, और टाइम को भी हम मलूज खातिर रख रहे हैं कि आपकी तरफ जो है वो अब बहुत कम वक्त रह गया है और इफ्तार होने वाला है, कि आपने जो इस्तदलाल पेश किए शफात के ऊपर उसमें एक मुनकरीन एक इस्तदलाल और एक तरीके से पेश करते हैं, उसका भी अगर आप जवाब देते जाएं तो बहुत ही उम्दा होगा, कि वो कहते हैं कि बाज लोग आप कहते हैं कि शफात करेंगे हालांकि जनाजे लोगों ने इस दुनिया में उनके उठाए हैं, कांधा दिया है, दफनाया है, मरकज मौजूद है, तो फिर जो लोग इंतकाल कर गए इस दुनिया से जा चुके वो किस तरह से शिफात करेंगे, ये भी एक इस्तेदाल वो पेश करके और मासूम आवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, इसका भी जवाब अगर आप मरहमत फरमा दें तो बड़ी नवाजिश होगी।
जी मुसी साहब, देखिए जहाँ तक शफात का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शिया और तमाम अहले तसल्लुन के भाई शफात के कायल हैं और अहले बैत की शफात के हम दोनों कायल हैं, सिवाय ये कि इनके अलावा कुछ अफराद हैं जो शफात के कायल नहीं हैं। और जो इतराज़ आपने किया और वो यही करते हैं वो ये है कि देखिए जिंदा से तो टोल ठीक है, जिंदा आपकी शफात कर लेगा, मगर जो दुनिया से जा चुका है वो कैसे आपकी शफात कर सकता है जिसका ज़ाहरी वजूद इधर नहीं है। देखिए सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहला जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि शफात के लिए किसने कहा कि जिस्म का होना ज़रूरी है, क्योंकि तमाम शिया सुन्नी किताबों में ये लिखा हुआ है कि खुदा सबसे बड़ा शाफी है, खुदा ही सबसे बड़ा शाफी है, फिर खुदा ने दूसरों को शिफात का हक दिया है। तो जो खुदा सबसे बड़ा शाफी है वो तो जिस्म नहीं रखता, खुदा का तो कोई जिस्म नहीं है, खुदा बिला जिस्म है, खुदा का तो कोई यानी जाहिरी जिस तरह हमारा जिस्म है खुदा का कोई जिस्म नहीं है, तो वो खुदा जिसका जिस्म नहीं वो सबसे बड़ा शाफी हो सकता है, तो जिस्म की शफात के लिए कोई जरूरत नहीं है। अगर जिस्म की जरूरत होती तो इसका मतलब ये है कि जो ज्यादा सेहतमंद है अच्छा खासा तंदुरुस्त है वो अच्छी शफात कर पाएगा, और जो बेचारा कमजोर है हमारी तरह वो सही शफात नहीं कर पाएगा, जबकि ये कोई बात नहीं है। शफात का ताल्लुक जिस्मानी नहीं है, शफात का ताल्लुक एक रूहानी ताल्लुक है। तो पहली बात तो चलिए अगर कोई कहेगा जिस्मानी तौर पर इस दुनिया में है नहीं तो वो कैसे शफात कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही जवाब यानी मर्दूद है, यानी एक लॉजिक ही नहीं उसमें बनती कि उसके उनसे आप पूछें कि दलील क्या है कि जो जिंदा होगा वही शफात करेगा। अच्छा, दूसरा जवाब, चले उन्हीं से, उन्हीं की बात को लेकर हम दूसरा जवाब ये देना चाहेंगे कि हम सब मुसलमान शिया सुन्नी कुरान की आयत पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि खुदा के हैं हम खुदा की तरफ जाएंगे, जो हमारे प्रोग्राम का नाम भी खुदा की तरफ है, इलैहि राजिऊन, हम खुदा की तरफ ही जा रहे हैं। तो अब इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हम खुदा की तरफ जाएंगे। जो लोग मर जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो खुदा ही की तरफ जा रहे होते हैं ना, यानी जो दुनिया में है वो हमारे सामने है, जिस्मानी तौर पर हमारे सामने, जो दुनिया से जा चुके हैं वो खुदा की तरफ जा चुके हैं, यानी वो हमसे ज्यादा खुदा के करीब हैं, वो हमसे ज्यादा खुदा के नजदीक हैं। तो जो हमसे ज्यादा खुदा के नजदीक हैं वो तो शफात का ज्यादा मुस्तहक है, वो तो शफात की ज्यादा ताकत रखता है, वो हमसे ज्यादा शफात का ओला है, यानी शफात वो कर सकता है जो खुदा के करीब है। जो दुनिया से जा चुका है वो तो ज्यादातर अल्लाह से ज्यादा करीब हो चुका है। ये दो जवाब आपकी खिदमत में, और तीसरा जवाब मैं क्योंकि मुख्तसर करूँ, हमारे पास नमाज का टाइम भी हुआ जा रहा है, और ये दो जवाब देकर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। और एक जवाब जो तकरीबन अक्सर शिया सुन्नी बच्चे को भी शायद ये आयत याद हो, सूरह आल इमरान की, वला तहसबन्ना लजीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून, कि जो लोग खुदावंद मुताल की बारगाह में खुदावंद मुताल के लिए, खुदावंद मुताल की खातिर कुर्बान हो चुके हैं और शहीद हो चुके हैं और राह खुदा फी सबीलिल्लाह शहीद हो चुके हैं, कभी उन्हें मुर्दा न समझना, बल्कि वो जिंदा हैं और उन्हें खुदा के पास रिस्क मिल रहा है। तो अगर कोई कहता है नऊज़ु बिल्लाह रसूल अल्लाह मर गए हैं, नऊज़ु बिल्लाह अहले बैत मर गए हैं और अब वो जिंदा नहीं है, तुम्हारी शफाअत नहीं कर सकते, ये तो कुरान साफ साफ कह रहा है कि जो रसूल के कदमों पर मर जाए उसे मुर्दा न कहना, खुद रसूल का क्या मकाम होगा, खुद रसूल का क्या मर्तबा होगा। ये तीसरी दलील आपकी खिदमत में अर्ज की। और चौथी दलील आपकी खिदमत में जो हजरत जो कुरान में सूरह अनफाल में जिक्र हुआ कि या अय्युहल लजीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वल रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहीकुम, खुदावंद मुताल मोमिनों से कह रहा है ऐ ईमान लाने वालो रसूल की आवाज को लब्बैक कहो। अच्छा, फिर नतीजा क्या मिलेगा? इज़ा दआकुम, जब वो तुम्हें बुला रहे हैं, लिमा युहीकुम, अगर तुम रसूल की आवाज को लब्बैक कहते हो तो तुम्हें हयात मिलेगी, तुम्हें जिंदगी मिलेगी। अब देखिए, रसूल की आवाज को जो लब्बैक कहेगा उसे जिंदगी मिलेगी। आपको एक मिसाल दे दूं कि हजरत हमजा ने रसूल अल्लाह की आवाज पे लब्बैक किया और तलवार उठाई और लब्बैक कहते हुए मैदान जंग की तरफ गए और उन्हें वहां शहादत मिल गई और वो दुनिया से जा चुके हैं। कुरान की आयत कह रही है जो भी रसूल को लब्बैक कहेगा, अब जिस हालत में भी हो, खुदावंद मुताल उसे जिंदगी अता करेगा। अगर कोई कहता है हजरत हमजा मर चुके हैं तो ये कुरान की इस आयत के खिलाफ कह रहा है, क्योंकि कुरान में खुदावंद मुताल कह रहा है कि जिसने रसूल की आवाज को लब्बैक कहा और रसूल की मदद की, खुदावंद मुताल उसे जिंदगी अता कर देगा। अगर कोई कह दे हजरत हमजा, न किसी में किसी औलिया खुदा बुजुर्ग अंबिया और आइम्मा की नहीं बात कर रहा, यहाँ तक कि हजरत हमजा या कोई भी सहाबी रसूल की नुसरत करता हुआ दुनिया से गया है, अगर कोई कह दे वो मर गए तो गलत कह रहा है, कुरान मजीद की सूरह अनफाल की 24वीं आयत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जिसने भी रसूल की मदद की और उसने जान दे दी, उसे दर हकीकत खुदा ने अबदी जिंदगी अता कर दी है और वो हमेशा के लिए जिंदा है। तो अब ये तमाम आयतों की रोशनी में यही नतीजा निकलता है कि अगर कोई भी शफात कर, कोई दुनिया से जा चुका है, वो शफात के काबिल है और वो शफात की ताकत रखता है, बल्कि शायद जिंदा लोगों से ज्यादा वो शफात की ताकत रखता है। और वजह यह है कि एक तो वो खुदावंद मुताल ने उन्हें जिंदगी अता कर दी है और वो खुदावंद मुताल के पास रिज़्क़ हासिल कर रहे हैं।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही ऐसा अंदाज है आपने जो शफात के मुतालिक जो दुश्मन इस्तदलाल पेश करते हैं, असल में वो इस्तदलाल इसलिए पेश करते हैं कि उनका एक जगह पर अकीदा ऐसा भी है कि खुदा के घुंघरियाले बाल हैं और वो एक नौजवान शख्स की मानिंद है। तो यकीनन जब वो इस तरह के भी अकीदे रखते हैं तो फिर इस तरह के सवालात भी उठने कोई अजब बात नहीं है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं हुज्जतुल इस्लाम सैयद अली रजा जान काजमी साहब आपके, हम बहुत शुक्रगुजार हैं हुजूर इस्लाम सैयद आरिफ हुसैन शाह काजमी साहब आपके। आपकी तरफ इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है और हम इस प्रोग्राम को नाज़रीन जो है वो कंटिन्यू करेंगे और हमारे साथ मौजूद रहेंगे हुजूर इस्लाम सैयद मोहम्मद रजा जान काजमी साहब। क़िबला, आखिरी लहजात है, प्रोग्राम अपने अख्ताम की तरफ जाएगा, तो हम ये चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ आप दुआए इफ्तिताह की के साथ लेके आगे बढ़ें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास कितना वक्त है अभी प्रोग्राम में?
अभी हमारे पास तकरीबन 7 मिनट्स हैं टोटल।
इंशाल्लाह मुख्तसर آج انشاءاللہ آپ کی
جی
خدمت میں دعائے افتتاح کی تلاوت کرتے ہیں، اور تمام مومنین سے یہ درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، امام زمانہ نے بڑی پیاری دعا ہمیں سکھائی ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ کم سے کم رمضان کے مہینے میں پڑھیے۔ میں اس دعا کے کچھ جملے انشاءاللہ پڑھتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ بھی میرا ساتھ دیجئے مومنین جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اور دیکھیے کتنے پیارے انداز سے مولا نے ہمیں اللہ سے بات کرنا سکھایا۔ جیسے کہ آپ نے شروع میں سوال
سبحان
پوچھا تھا
اللہ
کہ اللہ کی طرف جانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اس میں وہ سارے فائدے مولا نے ہمیں بتائے ہیں کہ اللہ کی طرف جانے کے کیا کیا ہمیں فائدے ملتے ہیں۔
واہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم انی افتتح الثناء بحمدك وانت مسدد للثواب بمنك وأيقنت أنت أرحم الراحمين، میرے اللہ مجھے یقین کامل ہے کہ تو ہی ارحم الراحمین ہے، تو ہی میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو ہی مجھے مشکلات سے نجات دینے والا ہے، انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة، اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، میرے اللہ تو نے مجھے خود سے بات کرنے کی اجازت دی، انسان سوچے میں کون ہوں، میں کچھ بھی نہیں ایک نجس قطرہ ہوں، اگر تو خالق کائنات ہے، مگر تو نے مجھے خود سے بات کرنے کی اجازت دی، خود سے مانگنے کی، خود سے فقیری کی اجازت دی، فاسمع یا سمیع مدحتی واجب یا رحیم دعوتی وأقل يا غفور أثرتي، فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، میرے اللہ کتنی مشکلات میں ڈوبا ہوا تھا، تو نے مجھے نجات دی، وہموم قد کشفتا، کتنے غموں میں ڈوبا ہوا تھا مگر غموں سے تو نے مجھے نکالا۔ ایک ایک نعمت کو انسان اگر سوچے تب شکر کرے گا،
اللہ
میں کتنی مصیبتوں میں تھا، غموں میں ڈوبا ہوا تھا، وعسرتین قد اقل چاہا، کتنی مرتبہ میں گناہ میں گرنے والا تھا مگر تو نے مجھے بچا دیا، تو نے مجھے گناہ سے روک دیا، ورحمتین قد نشارت سحار، اور کتنی رحمتیں تو نے مجھ پہ نازل کی، حالانکہ میں رحمت کا لائق نہیں تھا، میں عذاب کا مستحق تھا، مگر تو نے مجھ پہ کرم کیا، سب مل کے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، میرے اللہ ہم پہ رحم فرما، تجھے واسطہ علی اصغر کے زخمی گلے کا، ہم پہ رحم فرما، تجھے واسطہ اکبر کے زخمی سینے کا، ہمیں اپنا حقیقی عشق عطا فرما، رمضان تجھ سے دوستی کا مہینہ ہے، میرے اللہ ہمیں اپنا دوست بنا، میرے اللہ ہمیں امام زمانہ کا حقیقی عاشق بنا، التماس دعا.
سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. ہم انتہائی مشکور ہیں اپنے تینوں مہمانہ نے گرامی کا، اس میں ہمارے ساتھ شرکت کی مولانا سید عارف حسین شاہ قاسمی صاحب نے قوم المقدسہ سے ہمارے ساتھ شرکت کی، ہمارے دوسرے مہمان نے مولانا سید علی رضا جان قاسمی صاحب کا آپ نے قوم سے ہمارے ساتھ شرکت کی، اور مولانا سید محمد رضا جان قاسمی صاحب آپ نے ہمارے ساتھ لندن سے شرکت فرمائی. ہم اپنے تینوں مہمانوں نے گرامی کا انتہائی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار بھی ہیں، ممنون بھی ہیں، مشکور بھی ہیں. ناظرین، اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے، اور ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل یو کے ٹائم سے 4 بجے ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.